श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आते हैं जो यशाया की पुस्तक 23 अध्याय उसके 15 पद से आरंभ होती है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जो कुछ भी आज हम अध्ययन करते हैं समझ सकें, जान सकें, ग्रहण कर सकें और उससे अपने जीवन में लागू करने पाएं। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम सोर के विनाश की भविष्यवाणी देख रहे थे। वह 70 वर्ष के लिए बंधुआ दास बनाया जाएगा और फिर लौट आएगा। अब हम इस अध्ययन में देखेंगे सोर का पुनरुद्वार आंशिक और पूर्ण। यशाया 23 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक सोर बिसरा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर सोर वेश्या के समान गीत गाने लगेगा। सोर देश 70 वर्ष की बंधुआई में जाएगा। तब हम पढ़ते हैं यशाया उसके 23 अध्याय के 17 पद में, 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा सोर की सुधि लेगा और वह फिर छिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के संग छिनाला करेगी। 70 वर्ष के बाद सोर फिर से अपना विश्वव्यापी व्यापार आरंभ करेगा। वह एक बार फिर महान व्यापारिक केंद्र बनेगा और संसार के सब राष्ट्रों के साथ व्यभिचार करेगा। यशाया सोर की तुलना एक वेश्या से करता है, एक वेश्या जो अपवित्र व्यवहार करती है। परमेश्वर सब व्यापारिक केंद्रों के विषय यही धारणा रखता है। जी हाँ, अब हम महाक्लेश के युग में प्रवेश करते हैं। अंतिम दिनों में हम देखते हैं कि सोर एक महान राष्ट्र होगा और सहस्त्र वर्षीय राज्य में प्रवेश करेगा। यशाया 23 उसके 18 पद में लिखा है, उसके व्यापार की प्राप्ति और उसके छिनाले की कमाई यहोवा के लिए पवित्र की जाएगी। वह न भंडार में रखी जाएगी न संचय की जाएगी, क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे कि उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले। उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे। सब परमेश्वर को समर्पित की जाएगी। भजन संहिता 45 के 12 में इसका उल्लेख है, सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। जी हाँ, ये बातें उसके लिए है। अब यहाँ पर अध्याय 23 समाप्त होता है और हम अध्याय 24 में अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे जिसका विषय है महाक्लेश का आगमन। यद्यपि विषय दंड का ही है, हम एक नए भाग में आते हैं। अध्याय 23 तक इसराइल के पड़ोसी राज्यों को दंड दिए जाने की भविष्यवाणी थी और अब वह पृथ्वी पर आने वाली अंतिम दंड की भविष्यवाणी करेगा, जिसे हमारे प्रभु यीशु ने महाक्लेश कहा है। एफ डेलिच और एफ सी जेनिंग्स दोनों ही इस घटना को अंतिम समय की घटना मानते हैं। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर का दंड है जो संपूर्ण संसार पर आएगा। अध्याय 13 से 23 की भविष्यवाणियां जो पूरी हो चुकी हैं, उनके विपरीत यह भविष्यवाणी दूरस्थ भविष्य की है। तो आइए हम इस अध्याय में आगे बढ़ें और देखेंगे परमेश्वर का विश्वव्यापी दंड। यशाया की पुस्तक 24 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर वितर करेगा। ध्यान दीजिए, यहां पृथ्वी शब्द का अर्थ इसराइल भी हो सकता है और विश्व भी। इस संदर्भ में इसका अर्थ विश्व माने तो उचित होगा। दंड वास्तव में दो रूप में होगा, इसराइल और संपूर्ण विश्व पर। हम आगे पढ़ते हैं यशाया के पुस्तक 24 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, इस कारण पृथ्वी को शाप गरसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। परमेश्वर ने नूह से प्रतिज्ञा की थी कि वह पृथ्वी का सर्वनाश जल प्रलय से नहीं करेगा। यहां ध्यान दें कि अब दंड आग से होगा। दूसरा पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल में आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं और देखेंगे भक्तों की सुरक्षा। पद 13 से 15 में हम देखते हैं कि भक्त जन महाक्लेश में भी सुरक्षित हैं। यशाया की पुस्तक 24 अध्याय 13 से 15 पद में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झाड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाते हैं। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणानुवाद करो। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि ये भक्त जन बहुत कम होंगे और वे ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा गाएंगे। महाक्लेश के समय परीक्षा की घड़ियों में वे प्रभु यीशु का महिमान्वन करेंगे। इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणानुवाद करो, कहने का अर्थ है कि उस समय इसराइल के लोग बचे रहेंगे और पृथ्वी की छोर से अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर इसराइली बचेंगे। आगे हम देखेंगे बेजोड़ विश्वव्यापी कष्ट। यशाया की पुस्तक 24 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि धर्मी की महिमा और बड़ाई हो, परंतु मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हो गया नष्ट, क्योंकि विश्वघाती विश्वासघात करते वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। मेरे मित्रों, यहां पर लिखा है मैं नष्ट हो गया नष्ट। महाक्लेश की भयानकता को देखकर यशाया पुकार उठा, जिसे डॉक्टर जेनिंग्स इस प्रकार कहते हैं, मेरा दुख मेरा दुख। यह एक भयानक समय होगा। मेरे प्रियो, हम मत्तीरचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 21 और 22 पद में भी प्रभु यीशु ने इसके बारे में अति उत्तम ही वर्णन किया है। उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यशाया की पुस्तक 24 अध्याय के 17 पद में आगे लिखा हुआ है, हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गढ़ा और फंदा तुम्हारे लिए है। पृथ्वी के निवासियों पर उस समय आने वाले कष्ट तीन प्रकार के होंगे। आइए हम देखें क्या है। पहला, भय। यहां भय से मुक्ति नहीं है। इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के मध्य अटलांटिक महासागर की संधि से लेकर के आज तक विश्व के अगुओं ने मनुष्य को भययुक्त करने के अनेक विचार किए हैं, परंतु क्या हुआ है? क्या संसार आज भय से मुक्ति पा चुका है? असंतोष और भय हर जगह है। महाक्लेश के युग में भय और भी बढ़ जाएगा। दूसरा है गढ़ा, अर्थात मृत्यु का संकट। आज संसार पर अनुभव का भय छाया हुआ है, जिसके कारण मनुष्य की बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है। परमेश्वर कहता है कि वह जनसंख्या को नष्ट नहीं होने देगा। परमेश्वर ने कहा कि यदि वे दिन कम न किए जाते तो कोई मनुष्य न बचता। वह उस युग को छोटा कर देगा। और तीसरा है फंदा, अर्थात धोखा। प्रभु यीशु ने जो बातें जैतून के पर्वत पर कही थी वे महाक्लेश के युग से मेल खाती है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 4 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। जी हाँ, वह ऐसा समय होगा कि मनुष्य को प्रभु के राज्य का भ्रम होगा। आज ऐसा लगता है कि विश्व के कुछ अगुए सोचते हैं कि वे प्रभु राज की स्थापना कर पाएंगे। वे तो केवल महाक्लेश ही ला पाएंगे और ख्रिस्त विरोधी राज करेगा। संसार सोचेगा कि वह प्रभु राज में आ गया है, परंतु वह वास्तव में महाक्लेश का समय होगा। ख्रिस्त विरोधी का एक मुख्य गुण होगा धोखा। वह धोखा देने वाला होगा। उसका पिता शैतान भी यही काम करता है। मेरे मित्रों, आज कितने लोग उसके छल का शिकार हैं। वे जीवन के संबंध में उसे धोखा खाए बैठे हैं। कितने लोग अनंत जीवन के बारे में सोचते हैं? अधिक नहीं, अधिकांश मनुष्य केवल आज और यहां के बारे में सोचते हैं। उनका कहना है कि खाओ पियो और मर जाओ। विज्ञान परमेश्वर द्वारा ब्रह्मांड की रचना का खंडन करता है। वे इसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। यह भ्रम का एक महान दिवस है। आपको विज्ञान धोखा देगा, आपको राजनेता भी धोखा देंगे, आपको समाचारों में धोखा दिया जाएगा, आपको सेना भी धोखा दे सकती है, आपको नारे लगाने वाले धोखा देंगे। एकमात्र सहायता का स्रोत है प्रभु यीशु मसीह। उसके पास जाएं, वह हमारे लिए ज्ञान बनाया गया, वही एकमात्र आशा है। महाक्लेश के समय मनुष्य धोखा खाएगा। ख्रिस्त विरोधी देख करके कहेगा, दूध पीते बच्चों। मनुष्य ऐसा ही तो होगा। शैतान तो मानव जाति को पहले से ही ऐसा कह रहा है। यदि हम प्रभु यीशु के पास ना आए तो हम भी ऐसे ही हैं। यशाया 24 उसके 18 पद में लिखा हुआ है, जो कोई भय के शब्द से भागे वह गढ़े में गिरेगा, और जो कोई गढ़े में से निकले वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। वे जो मृत्यु के गढ़े में नहीं जाएंगे वे धोखे में पड़ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अनुसार एक ही बार महादंड द्वारा विश्व की चौथाई जनसंख्या नष्ट होगी और फिर शेष की एक तिहाई जनसंख्या का नाश होगा। मेरे मित्रों, महाक्लेश में मरने वाले भक्त जी उठेंगे। धर्मशास्त्र का अंश महान है। यह पुनरुत्थान की चर्चा करता है। आइए हम देखें यशाया 24 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, वे बंदियों के समान गढ़े में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी, अर्थात वे मर जाएंगे और फिर जी उठेंगे। मेरे विचार में इसका अर्थ है कि महाक्लेश के समय के भक्त जन पहले पुनरुत्थान का भागी होंगे। वे मृतकों में से जिलाए जाएंगे। इसे हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक 20 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, महाक्लेश राजा के आगमन पर समाप्त होगा। इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 11 से 16 पद में पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं, यशाया 24 उसके 23 पद में लिखा हुआ है, तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा। प्रकृति भी उस राज्य को प्रतिक्रिया दिखाएगी जब वह राज करने के लिए आएगा। केवल प्रभु यीशु ही महाक्लेश का अंत करेगा। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 24 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे अध्याय 25 से, जिसका विषय है राज्य का आगमन। प्रभु यीशु आकर महाक्लेश का अंत करेगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। अध्याय 25 और 26 हमें प्रभु राज में ले चलते हैं। राजा आ रहा है और इस पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य स्थापित होगा। यह संपूर्ण पुराने नियम की भविष्यवाणी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का संदेश था मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 2 पद में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे मित्रों, उसे राजा स्वीकार नहीं किया गया। राजा के बिना राज्य नहीं हो सकता है। जब वह राजा स्वीकार नहीं किया गया, तब उसने मनुष्यों से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, वह आज भी हमें निमंत्रण दे रहा है। यह संदेश आज के मनुष्यों में पहुंचाना है और उनसे कहना है कि वे अपने स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करें। आप आज अनजाने में या जानते हुए निर्णय ले रहे हैं। आप या तो उसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। तटस्थता की संभावना ही नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 30 पद में प्रभु यीशु कहता है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह विखेरता है। जी हाँ, यह अद्भुत अध्याय 3 पदों का एक गीत है। अध्याय 12 के समान यह भी एक स्तुति गान है, परिशुद्ध आनंद का गीत है। हम आगे अब पढ़ते हुए देखेंगे सब शत्रुओं से मुक्ति के लिए स्तुति गान। यशाया के पुस्तक 25 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। यह युक्ति के कारण परमेश्वर का स्तुति गान है। जी हां, यह आनंद, आश्चर्य और आराधना का गीत है। यह उमड़ते हुए मन का उद्गार है, क्योंकि आराधक को परमेश्वर और उसके कामों का नया अनुभव प्राप्त हुआ है। मेरे मित्रों, यह आपकी आराधना का गीत नहीं है। वहां तो कुछ भक्त जन बैठकर सोचते हैं कि वे वहां आए ही क्यों हैं। इस गीत के गाने वाले वे हैं जो परमेश्वर की आराधना के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वह विश्वास योग्य और सच्चा है। ये परमेश्वर के गुण हैं और मनुष्य के लिए अपरिचित हैं। भजन संहिता 118 उसके 8 में भजनकार कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। जी हां, विश्वास योग्यता आत्मा का फल है, देह का काम नहीं। सत्य मनुष्य के विपरीत स्वभाव है। भजन संहिता 116 उसके 11 में दाऊद कहता है, मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। मुझे डॉक्टर W.I. केरल की टीका स्मरण आती है। मुझे उस पर विचार करने में बहुत कम समय लगा, परंतु मैं दाऊद से सहमत हूं। यशाया 25 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है, तूने नगर को ढेर बना डाला और उस गढ़ वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाया ना जाएगा। मेरे मित्रों, अतीत समाप्त हो गया है, वे शत्रुओं से मुक्ति पा चुके हैं। अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए शहरपनाह की आवश्यकता नहीं है। यशाया 25 उसके 3 पद में आगे लिखा है, इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा। क्या यह विश्वव्यापी मन फिराव को दर्शाता है? मुझे विश्वास है कि यह पद ऐसा ही दर्शाता है, क्योंकि यह प्रभु राज का वर्णन करता है। उस समय मनुष्य परमेश्वर के निकट आएगा, जब पाप की रात और महाक्लेश समाप्त हो जाएगा, तब परमेश्वर के निकट आने का एक व्यापक समय होगा। चाहे रात का रोना हो, परंतु भोर को आनंद और आनंद ही मिलता है। यहां यही कहा जा रहा है, प्रभु राज में असीमित आनंद होगा। यशाया 25 उसके 5 पद में लिखा है, जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जय जयकार बंद करता है। मेरे मित्रों, वे अंतिम दिनों की निंदा का स्मरण करते हैं जो एक मनुष्य के द्वारा होगी। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ध्यान दीजिए, ख्रिस्त विरोधी परमेश्वर के अन्य सब वैरियों के समान कुचला जाएगा। मेरे मित्रों, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति को हम देखेंगे। यशाया की पुस्तक 25 अध्याय के 6 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। चिकना भोजन अर्थात शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति। उस समय की मुक्ति प्राप्त पृथ्वी बहुत उपज देगी। उस युग में चिकना भोजन कोई समस्या खड़ी नहीं करेगा। उस समय चिकने भोजन का अर्थ आत्मिक पोषण भी होगा। मेरे विचार में प्रभु राज्य में बाइबल अध्ययन की कक्षाएं भी होगी। शायद प्रभु उस समय मुझे भी बाइबल की कक्षा लेने का सौभाग्य प्रदान करे और आप मेरे साथ हो। यशाया 25 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपने प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। यह पद पौलुस द्वारा पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 4 और 5 पद में संदर्भित किया गया है। जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं भावी आनंद की आशा में परमेश्वर की स्तुति। यशाया के पुस्तक 25 अध्याय के 9 पद में लिखा है, उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। अंतिम पद पर आते आते हम परमेश्वर के व्यक्तित्व की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। मनुष्यों को उसी से संबंध रखना होगा। ख्रिस्त विरोधी संसार को धोखा देगा, परंतु सच्चा मसीहा पृथ्वी का शासक भी आएगा। उस समय उसका उद्धार मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण होगा। मनुष्य उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। अब हम आगे देखते हैं, यह पद बड़ा ही विचित्र है। यशाया 25 उसका 10 लिखा है, क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा और मोआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसे घूरे में पुआल लताड़ा जाता है। यहां पर मोआब नाम क्यों आया है? मैं सच कहता हूं कि इसका कारण बताना कठिन है। जब मोआब ऊपर है तो परमेश्वर नीचे है, और जब परमेश्वर ऊपर है तो मोआब नीचे है। प्रभु राज में मोआब नीचा किया जाएगा, परमेश्वर ही सर्वोपरि होगा। आपको स्मरण होगा कि हमने देखा था कि मोआब भक्ति का रूप धरता है परंतु उसके सामर्थ का इनकार करता है। यशाया की पुस्तक 25 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, उसकी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहों को वह झुकाएगा और नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। मेरे मित्रों, मनुष्य का घमंड समाप्त हो जाएगा। यह वह समय होगा जब दीन जन पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 5 पद में हम इसे पाते हैं, आज तो मनुष्यों में दीन जन का स्थान नहीं है, परंतु एक समय आएगा जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर राज्य करेगा और लोग दीन होंगे। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि इस समय आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है। आप दीन जन है, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घमंड को त्याग कर परमेश्वर के सम्मुख दीन बने, ताकि उसके उन उत्तम आशीषों को प्राप्त करे जिसे परमेश्वर उनके जीवन में देना चाहता है। आज आपके लिए भी अवसर है कि आप अपने जीवन को टटोल करके देखें, परख करके देखें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं दीन जन बनना चाहता हूं, मैं आपके निकटता में आना चाहता हूं, अपने घमंड को त्यागना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर निश्चय ही आपकी समस्याओं से, आपके हर एक कठिनाइयों से मुक्ति देंगे। क्यों ना आज हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दें और कहें, प्रभु आप मेरी सहायता करें। प्रभु आप सबके साथ हो एवं आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।